Hello and welcome to Days of Our Lives, Mint's audio history series on liberalization and the ordinary man. Here, you will hear stories of how life changed for most people, be it the sunshine boy or the CEO following the reforms of 1991 in their voices.
अब जैसे जैसे लोगों के इंक्रीमेंट होने शुरू हुए कुछ इकोनॉमी में दम आने लग पड़ा तो किसी में दो दो लाख के शुरू हुए हम लोग सोचते थे क्या मजा आ रहा है दो दो लाख आज तो जैकपॉट लग गया अगर पाँच लाख की आपने कर ली तो यू हैव विन द रेस की भाई पता नहीं 10,000 एजेंट में से एक जने ने 5 लाख का इंश्योरेंस कर लिया बट मैं तो मैक्सिमम तब तक तो मैंने यूँ समझो कि 91 तक मैक्सिमम 5 लाख का बीमा उसके बाद से जब 2003 से जैकपॉट लगाया 10 करोड़ की एक पॉलिसी तो हमारे ब्रांच के अंदर आज तक वो टारगेट नहीं है
Last you heard Ashok Dhawan, a wholesaler in Banarasi Saris, talk about how the economic reforms impacted the Banarasi Sari trade. Today we bring you the story of reforms through the eyes of someone who sold dreams of a secure future, Zindagi ke saath bhi, Zindagi ke baad bhi.
मेरा नाम है राम कृष्ण ताहिम और मेरी एज है आज की डेट में 69 प्लस. मैं 1987 से LIC का एजेंट हूँ.
Most people have their first contact with an insurance company through people like Tahim, whose job is to help individuals and businesses select insurance policies that provide the best protection for their lives, health and property. But it isn't like being an LIC agent was Tahim's dream job. Born in Shahjahanpur, UP, Tahim's family belongs to Jalandhar. His father had a transferable job because of which Tahim moved from one city to another. By the time he was an adult, his father, who worked in an ordnance factory, was posted in Modinagar, from where Tahim did his graduation. And like most in the township, he joined one of the Modi group businesses and worked there for a little more than a decade. It was then that he started frequenting Delhi. And it was in one of those trips that he thought a little more money in addition to his fixed salary wouldn't do any harm. Tahim started working as a part-time LIC agent, not knowing, as he says, how big the institution really was.
LIC उस वक्त मुनाफ़ी थी, लेकिन हम लोग अभी नए थे, तो we cannot compare with the old one. हल्के-हल्के जब मैंने कहा अच्छा यार चलो कुछ इसका भी काम करो, अगर अच्छा हो निकलता है, जब निकलने लगा 20-20, 25-25 पॉलिसी होने लग पड़ी मोटी-मोटी, फिर पता लगा अच्छा इसमें भी अर्निंग है, फिर ऑटोमेटिक चलने लगा.
कितना हो जाता था आपका?
बस शुरू-शुरू में तो ऐसे ही है, जस्ट एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, तो 1-2 लाख रुपये साल की इनकम हो गई, बहुत ही. और उसके बाद फिर जब बड़ी बड़ी पॉलिसीज करने लगे तो पता लगा यार इट्स ए वेरी बिग इंस्टीट्यूशन.
Because of allegations of unfair trade practices by insurance companies, the Government of India on 19th January 1956 issued an ordinance nationalizing the life insurance sector. LIC came into existence the same year, absorbing 154 Indian, 16 non-Indian insurers, as also 75 provident societies. LIC till then had a monopoly over the insurance market. It was a time when computers hadn't quite made an entry into the everyday lives of Indians. Hence, work at LIC happened using typewriters, pen and paper. And the paper thin LIC policy document that you see today, which can easily rip, was not the same always. Let Tahim tell you what it was like then.
So, aap apna thoda kaam bataiye us zamane mein jab aap sirf aap hi do insurance companies thi, LIC aur GIC. Aap kaise customers ke saath?
Jo yaar dost the, bhai unke paas gaye, bhai koi thodi si kar lo, choti si kar lo. Us waqt 50,000, 10,000, 5,000, 1 lakh ki to bahut mushkil se policy hua karti thi. Us waqt LIC of India mein bhi 1,000 ki bhi policy hoti thi, 5,000 rupaye ki bhi policies hoti thi. क्योंकि इनके व्यूज़ ये थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिटीजन तक हमारी कवरेज हो जाए, इसलिए इनका एक टारगेट था कि लोएस्ट सम एश्योर्ड रखा जाए. टारगेट सम एश्योर्ड मींस एक टारगेट है कि आपको उतने सालों के अंदर इतने रुपए जमा.
एट अ टाइम व्हेन अदर्स वर चेजिंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड वर वेरी ऑफ एनीथिंग प्राइवेट, ताहिम डिक्लाइंड टू गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स, इंक्लूडिंग वन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द पोस्ट ऑफ अ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर. He didn't want to work 8 and 5 in what he calls would have been like working in a prison. He preferred more money and freedom to a government job. For the job of an LIC agent at that time, all you needed was to qualify class 10th. And Tahim was a science graduate.
उस वक्त टाइपिंग हुआ करती थी, टाइपराइटर होते थे तो वो लोग भर के ही देते थे, तो वो मैनुअल टाइप करते थे, मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, मैनुअल पॉलिसी बॉन्ड बनाते थे.
कैसे होता था वो
उस वक्त? पता नहीं, वो छपाई का होता था. एक फॉर्मेट बना होता था उसके ऊपर प्रिंटर और वो कार्बन लगा के निकाल देते थे, सारा डाटा उसमें आता था, वो सारा डाटा उसके ऊपर छप जाता था। ट्रिपल यानी कि तीन कागज लगा के, एक तो फर्स्ट पेज हो गया जो एक्चुअल हो गया, उसके नीचे सेकंड पेज, फिर उसके नीचे थर्ड पेज, उसमें तीन तीन कार्बन लगते थे। एक कॉपी ऑफिस में रह गई, एक कॉपी हमारे बड़े ऑफिस में चली गई, और जो मेन था बॉन्ड वो हमने पॉलिसी हो गया। और वो कागज़ इतना अच्छा होता था कि वो आप 50 साल तक रख ले, वो स्पेशल पेपर होता था, यानी जैसे मोटे कार्ड्स का जो जैसे पेपर होते हैं उस टाइप के होते थे, और उसके ऊपर सील होती थी गोल्डन जो रिप्रेजेंट करती थी इट्स ए वैलिड पेपर, और उसके पीछे एक हमारी ऑफिशियल सील होती थी, वो सील का इंप्रेशन उस पेपर के ऊपर आ जाता है, तो वो एक सर्टिफाई हो गया लीगल उस वक्त, इसको कानूनन माना जाता था, ये बहुत बिल्कुल करेक्ट, दैट वाज लाइक ए प्रोमिसरी नोट, आज वो चीज नहीं है।
According to a paper performance of LIC of India after liberalization published in the International Journal of Engineering Research and Technology, the state-owned LIC sold insurance as a tax instrument, not as a product giving protection. Most customers were underinsured with no flexibility or transparency in the products. With the entry of the private insurers, the rules of the game changed. LIC being a monopoly might have been a good thing for the organization, but Tahim says for the likes of him, it meant sitting for longer hours, telling people what insurance is and convincing them why they needed one. Tahim tells us more about the Indians who consciously decided to take insurance in those days.
उस जमाने में हिंदुस्तानी पॉलिसी LIC की क्यों लेता?
टैक्स से बचने के लिए। टैक्स था या सेविंग था? चलो भाई लॉन्ग टर्म सेविंग है।
तो एक आम आदमी क्यों लेता था LIC?
एक आदमी इसलिए लेता था, चलो यहाँ पैसे नहीं मरेगा, उतने क्लाइंट नहीं मिलते थे, हमारे इंडिया के अंदर इकोनॉमी इतनी लो थी कि लोगों के पास अपने पैसे एक्सपेंसेस के लिए बहुत कम बचते थे, सेव करने के लिए बचता ही नहीं था, भाई किसी को सैलरी 150 रुपये मिली या 50 रुपये मिली, उसमें पूरी फैमिली चलती थी। उस वक्त छोटे छोटे समय की भी पॉलिसीज होती थी, 5 साल की, 6 साल की, 8 साल की, आजकल मिनिमम 10 साल 12 साल से कम है ही नहीं पॉलिसी।
वो क्यों होती थी तब छोटे टाइम?
तब हर एक आदमी शॉर्ट साइटेड होता था, वो सोचता था यार हमें 4 साल के बाद पैसे मिल जाए, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट अब ये डिसकंटिन्यू करते जा रहे हैं, क्योंकि आज उसके अंदर कुछ IRDA के नए नॉर्म्स आ गए कि जितना पैसा एवरी ईयर देंगे उसका 10 times लाइफ का रिकवर भी रिक्वायर्ड है, उसको एक बेसिक रेट मान के तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो वो शॉर्ट पीरियड का इन्होंने फिनिश।
Obviously, the difference between the rich and the poor wasn't as stark then as it is now, since disposable income among Indians wasn't much. But the policy amount did sort of differentiate between the rich and the middle class even then.
अमीर आदमी कितना लेता था, middle class कितना लेता?
अमीर आदमी तो 1 लाख के ले लेता था या 2 लाख के, तो वो तो एजेंट, सुप्रीम एजेंट माना जाता है। उस वक्त ना एक और स्पेशल पॉलिसी होती थी, स्टेट इंश्योरेंस, वो जिनकी अपनी बड़ी बड़ी वेल्दी लोग होते थे, वो अपने स्टेट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेव करने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए एक तरह से, तो गवर्नमेंट के उस वक्त के टैक्स लॉज के हिसाब से वो एक्सेप्टेबिलिटी। मिडिल क्लास तो वही कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 30,000, फिर 50,000।
It wasn't several years after Tahim joined that the insurance market changed drastically. In 1993, the government set up a committee to propose recommendations for reforms in the insurance sector to complement the reforms initiated in the financial sector. And by the end of 2000, life insurance was privatized and India opened the entry door for foreign players with a maximum of 26% of foreign holding and also for private companies. This meant an end of LIC's monopoly.
तो भाई देखो, मैनेजमेंट को थोड़ा सा तो फियर हो जाता है ना, आज कोई आप मोनोपोली होल्डर हैं, कल आपके सामने कोई कंप्यूटर आ रहा है, तो ये मैनेजमेंट सोचती थी अरे कुछ नहीं रखा है यार, हम बहुत सॉलिड हैं, हमको कोई नहीं ला सकता। 2000 में जब ये ICICI प्रोडेंशियल फर्स्ट आई, तो थोड़ा बहुत भाई अब जो भी नई कंपनी आती है अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है, उसमें ये ICICI प्रोडेंशियल जब बनी थी तो एक ICICI इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके एक फाइनेंशियल बॉडी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आज भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, दीज वर द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका काम होता था ओनली टू फाइनेंस द नई कंपनी। अब वो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके वो इंस्टीट्यूशन थे, उसने इन्होंने कुछ सोचा भाई ये कंपनी काम तो कर रही है, इसको कोई फॉरन के साथ इसका टाइप कराओ, उन्होंने फॉरन की इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल रखे गए होंगे, तो पता लगा ये 25% या 27% स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, भाई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उनकी 27 करोड़ हमारी ज़्यादा रहे, जिससे कि हमारी होल्ड बनी रहे, हम अपनी टर्म्स कंडीशन को डिक्टेट करके उनको डोमिनेट भी रखें और अपनी मैनेजमेंट से इस प्रोडक्ट को चलाते रहें।
After liberalization, the number of participants in the industry has gone up from 6 insurers, including LIC and General Insurance Corporation in 2000, to 53 insurers currently operating in the life, non-life and reinsurance segments in India, according to rating agency CRISIL's report on Indian insurance industry in October 2015. Tahim says, even though it pinched, the change didn't mean LIC was losing the race in any way.
Mara. बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया, इतनी ब्रांचेज हैं जिससे ऑल ओवर इंडिया सभी को एक ब्रांच को से एग्जांपल एक दिन में 5 पॉलिसी या 10 पॉलिसी भी आ रही हैं, तो अगर जहां 2500 पॉलिसी हैं तो पर डे कितनी हो गई, लोअर साइड पे सोचे अगर कटी भी तो कितनी कटिंग, ज़्यादा ज़्यादा उनके फर्ज कीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया 5 ऑफिस खुले, एक ऑफिस में 50 पॉलिसी आ गई, तो हम लोग के लिए वो नेग्लिजिबल, हम लोग को कोई डेंट नहीं पड़ रहा था।
When the private players entered the market, they brought with themselves more options, more transparency. In 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority was constituted as an autonomous body to regulate the insurance industry, which was a big move considering insurance in India started without any regulations in the 19th century.
Foreign partner, वहाँ पर honesty का rate 99%. हमारी इंडिया में झूठ बोलने का या करप्शन का 99%। मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, मैं मलेशिया में भी रहा हूँ, मैं सिंगापुर में भी रहा हूँ, उन जगह पर पोलैंड गया, जर्मन गया, ऐसे लोग हैं वहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट किसी के घर नहीं जाता, किसी की दुकान पे नहीं जाता, वो उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। यहाँ पर वो चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी नहीं है, आप उसको ड्रीम्स बस दिखा देते हो, हम ड्रीम्स तो बेच रहे हैं ना, वहाँ पर ड्रीम्स नहीं है, वहाँ रेगुलेटर बड़ा स्ट्रांग है, वो हर स्टेप के ऊपर कोई भी किसी कंपनी ने गलती की इमीडिएट एनालाइज करता है। हमारे यहाँ जो आज मॉनिटर है जो IRDA, उसमें इतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं कि किस गलती को वो इमीडिएट जज कर जाए और पेनलाइज करें, या अगर पेनलाइज करना भी चाहते हैं तो हमारी जो मिनिस्ट्रीज के हैं, ओ यार हमारा ये बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप इसको ऐसे मत करने दो, तो वो चीज़ें यहाँ पर ना प्लस माइनस है।
Having spent more than 3 decades in the profession, Tahim says the reason why LIC was made a public sector undertaking have changed. He says a lot has happened in the sector, but much more needs to be done still. Regulations need to be strengthened to ensure no customer is sold unrealizable dreams. Interview by Ashwak Masoodi. This podcast was produced by Anik Biswas.